الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اس کلاس میں ہم تسکین بہشتی زیور کے ساتھ کتاب السلوک والاحسان پڑھ رہے ہیں، اور اس میں جو تیسرا موضوع ہے شیخ کامل کے ساتھ تعلق، تو اس کا ہم آخری عنوان پڑھ رہے ہیں کہ مرید بلکہ ہر مسلمان کی روز مرہ زندگی کے آداب. تو پہلے ہم نے اس میں جو اخلاق ذمیمہ تھے ان کے بارے میں پڑھا کہ کیا برے اخلاق ہوتے ہیں، تاکہ ہم جو ہے وہ اپنے اندر ان برے اخلاق کو آئیڈینٹیفائی کرنا یہ ممکن ہو سکے، ہمیں پتہ ہوگا کہ ہماری کیا بیماریاں ہیں، کیا خرابیاں ہیں، تو پھر اپنے اندر ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے پھر ان کو نکالنے کی محنت کرنا یہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. اس وجہ سے حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے اخلاق ذمیمہ کا ذکر کیا، اور اس کے بعد پھر یہ بتایا کہ اخلاق حمیدہ کیا ہوتے ہیں کہ ہم ان کے اوپر محنت کر سکیں، کہ اپنے اندر ان کو پیدا کیسے کرنا ہے. جب یہ دونوں باتیں بتا دی، یعنی بیماریوں کے بارے میں بتا دیا اور خوبیوں کے بارے میں بتا دیا، تو اب ان کو پیدا ان کو ختم کرنا اور ان کو جو ہے وہ پیدا کرنا، تو ان کے لیے پھر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سبب عطا فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے وہ اسباب کی دنیا ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسباب کے ذریعے سے کام لیتے ہیں، جیسے پچھلی مردوں کی ایک کلاس کے اندر کافی تفصیل سے بات ہوئی تھی معجزے، کرامت اور استدراج کے موضوع کے اوپر، کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں معجزہ، کرامت اور استدراج، یہ وہ کام ہوتے ہیں جو اسباب کے جو نظام ہے اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا اس سے ہٹ کر کے جو کام ہو جاتے ہیں نا، یعنی اسباب کے نظام کے خلاف جا کر کے جو کام ہو جاتے ہیں وہ معجزہ کہلاتے ہیں. اگر نبی کے ہاتھ پر ہوں کرامت کہلاتے ہیں، اگر ولی کے ہاتھ پر ہوں اور استدراج کہلاتے ہیں، اگر فاسق فاجر یا کافر کے ہاتھ پر ہوں. تو وہاں پر یہ بات ہوئی تھی کہ دنیا میں جو کام ہوتے ہیں وہ سارے اسباب کے تحت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب اصلاح کا سبب کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، اس کو جو ہے وہ شیخ کہتے ہیں، اس کو پیر کہتے ہیں، اور اس کو استاد بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن استاد کا لفظ جو ہے وہ مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے، تو پیر اور شیخ کا جو لفظ ہے نا وہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو جب شیخ کے ساتھ تعلق ہو گیا تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ شیخ نے آپ کو آپ کی مدد کرنی ہے، آپ کو آپ کی رہنمائی کرنی ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ یہ بھی پتہ ہونا چاہیے، شیخ بتا بھی دیں گے لیکن اگر ایک لسٹ کے اندر لکھا ہوا بھی ہو تو بھی آسانی ہو جاتی ہے کہ بھئی ہمیں اپنے اندر کیا کیا آداب پیدا کرنے چاہیے. تو وہ ایک لسٹ حضرت نے لکھ دی تھی 1 سے لے کر کے 40 نمبر تک، تو اس میں ہم 35ویں نمبر کے اوپر ابھی ہیں، جس میں حضرت فرماتے ہیں کہ روزانہ کسی وقت بیٹھ کر اپنے دن بھر کے کاموں کو سوچا کرے، اور جو نیکی یاد آئے اس پر شکر کرے، اور گناہ پر توبہ کرے، یعنی اپنا محاسبہ کرے. محاسبہ، حاسبو قبل ان تحاسبو، کہ تم محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. محاسبہ کیا ہوتا ہے کہ کسی کا جو ہے نا وہ یعنی اس کا اکاؤنٹ کھول کر کے اس کا حساب کتاب کیا جانا، حساب کتاب کیا جانا، اس کو محاسبہ کرنا کہتے ہیں. ہمارے یہاں جو ہے وہ چونکہ اسلامی مملکت ہے اور اسلام کا تعلق جو ہے وہ عربی زبان کے ساتھ بڑا گہرا ہے، इस वजह से हमारे यहाँ ऐसे जो है वो गवर्नमेंट के इदारे वगैरह बनते रहते हैं जिनका नाम अरबी जुबान के ऊपर होता है। तो इस वजह से ना मुहासब मुहासिब का इदारा या एहतसाब का अमल, ये सब जो है वो हमारे मुल्क-ए-खुदादाद के अंदर सुनने को अक्सर मिलते हैं। तो इदारे जो है वो बना दिए जाते हैं, काम करें ना करें ये तो दूसरी बात है। तो बहरहाल उनका नाम भी उन्होंने मुहासबा और इसी के ऊपर एहतसाब के ऊपर ही रखा कि ये जो है ना वो अब वो दूसरों का हिसाब करेंगे, दूसरों का एहतसाब करेंगे। तो हमारा दीन जो है ये हमें हमेशा से बता रहा है कि तुम अपना मुहासबा करो, खुद देखो, अपने अंदर गरेबान में झांक करके देखते रहा करो कि तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो। तो यानी वैसे तो एक जो अकलमंद इंसान होता है, ज्यादा अकलमंद जो होता है वो तो हर वक्त ही अपना मुहासबा करता रहता है, चलते फिरते उठते बैठते हर वक्त वो अपना मुहासबा अपने आप को क्रिटिकली एनालाइज करता रहता है कि मैंने क्या चीज सही करी, क्या कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसा लगता है कि जैसे वो अपने आप को वॉच कर रहा है, जैसे उसका जिस्म जो है ना वो जमीन के ऊपर चल रहा है और उसकी एक एहतसाबी निगाहें, एहतसाबी आंखें वो उसके ऊपर यानी उसके ऊपर जो है ना वो साथ साथ उसके चल रहे हैं जो कि उसको मुस्तकिल देख रही हैं। ठीक है, आपने ये भी हो सकता है कभी खुद फील किया हो या कभी किसी ऐसे शख्स को देखा हो कि वो हर वक्त जो है वो कॉन्शियस रहता है। ठीक है, हर वक्त कॉन्शियस के उसको कोई देख रहा है, लोग उसके बारे में क्या सोच रहे होंगे, वो उसकी उसकी यानी चाल कैसी है, उसकी हरकतें कैसी हैं, कैसे जो है वो राइट हर वक्त लोग उसको देख रहे हैं। वो बस उसके जहन के अंदर ना हर वक्त ही चलता रहता है कि लोग मुझे देख के क्या क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज जो है वो यानी होता है लोगों की उम्र के अंदर कभी कोई ऐसा, खुसूसन जो है ना जब नौजवान होते हैं ना, तो कुछ नौजवान जो होते हैं वो इंतहाई एक तो लाओबाली होते हैं कि उनको किसी की फिक्र नहीं होती कि वो कोई उनके बारे में क्या सोच रहा है, क्या देख रहा है, और कुछ जो होते हैं वो बहुत ज्यादा ही उबाली होते हैं, यानी लाउबाली नहीं होते बल्कि शायद उसका ऑपोजिट जो है वो उबाली बनेगा कि उनको हर वक्त ही फिक्र पड़ी रहती है कि लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो रूहानी दुनिया के अंदर रूहानी एतबार से अगर देखा जाए तो एक ईमान वाला जो है वो बिल्कुल ऐसा ही होता है। फर्क ये होता है कि वो लोगों के बारे में फिक्रमंद नहीं होता बल्कि वो लोगों के परवरदिगार के बारे में फिक्रमंद होता है कि परवरदिगार मुझे देख रहा है और वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, फर्क जो है वो एक अच्छे ईमान वाले में और एक आम आदमी में ये होता है कि उसको वो लोगों की फिक्र पड़ी भी होती है और उसको जो है वो अल्लाह ताला की फिक्र पड़ी भी होती है कि वो उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं। तो आइडियली स्पीकिंग तो हमें हर वक्त ही अपना मुहासबा करते रहना चाहिए, हर स्टेप ऑफ द वे, एवरी स्टेप ऑफ द वे। लेकिन अगर ऐसा ऐसी कैफियत हासिल नहीं है तो ऐसी कैफियत को पैदा करने के लिए अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह आप मुझे ऐसा बना दीजिए कि मुझे आपकी फिक्र हो जाए, मैं आप मुझे आपकी खशियत नसीब हो जाए। ठीक है, इसी को खशियत अल्लाह ताला की नसीब हो जाना भी कहते हैं। और इसके लिए फिर दवा ये करनी चाहिए कि जितना हो सके उतना तो अपना मुहासबा करें ना। ठीक है, तो उसका सबसे आसान रास्ता यह है कि दिन में एक वक्त कोई ऐसा रख ले कि जिसके अंदर बैठ करके अपना मुहासबा किया करे। ठीक है, आमतौर पर जाहिर है दिन सारा गुजर जाए तो आखिर में बैठ करके अपना मुहासबा करे। सही, जैसे रात के वक्त थोड़ी देर के लिए बेशक कुर्सी पे बैठ जाए या जो है वो बिस्तर पे लेटे लेटे कि भाई आज मैंने क्या किया। ठीक है, तो फरमाते हैं कि जो नेकी याद आए तो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें, यानी नेकी आए जहन में कि मैंने ये नेकी का काम कर लिया था तो उसके ऊपर खुश हो। ठीक है, ये नहीं है कि उसके ऊपर जो है वो खुश ना हो, उसके ऊपर नाराज हो, उसके ऊपर जो है वो परेशान हो कि हाय मैंने नेकी का काम कैसे कर लिया, क्यों कर लिया, नहीं, उसके ऊपर खुश हो, लेकिन खुश होने के साथ साथ जो है ना वो अल्लाह का शुक्र अदा करे कि अल्लाह ताला ने मुझे उस नेकी की तौफीक अता फरमाई। ठीक है, तो नेकी को अपनी तरफ मंसूब ना करे कि हाँ मैंने कितना जबरदस्त काम कर लिया और मैं कितना अच्छा हूँ और मैं कितनी अच्छी हूँ और मैं कितनी अकलमंद हूँ कि मैंने जो है वो ये नेकी काम कर लिया और वगैरह वगैरह, नहीं बल्कि अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक अता फरमाई कि मैंने नेकी काम कर लिया, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकल शुक्र। और गुनाह अगर याद आए कि मैंने फलाना गुनाह का काम कर लिया था, किसी को धोखा दे दिया था, किसी से झूठ बोल दिया था, किसी के साथ बदगुमानी कर दी थी, किसी का दिल दुखा दिया था, किसी को तकलीफ किसी और किस्म की पहुंचा दी थी, या जो है वो अल्लाह ताला का हक अदा नहीं किया, नमाज नहीं पढ़ी, या अपनी निगाहों की हिफाजत नहीं करी, अपनी जुबान की हिफाजत नहीं करी, तो ये सारे के सारे गुनाह हैं। तो अगर कोई ऐसा गुनाह याद आ जाए तो उसके ऊपर तौबा कर ले, अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमा दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए, आइंदा नहीं करूंगी। ठीक है, क्योंकि खवातीन की क्लास है तो आइंदा नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, तो गुनाह पर तौबा का मतलब क्या होता है कि शर्मिंदा हो, नादिम हो, पशेमान हो, और साथ साथ अल्लाह ताला के साथ ये इरादा भी करे, अल्लाह ताला को ये बता दे कि अल्लाह आइंदा नहीं करूंगी। ठीक है, तो आइंदा ना करने का इरादा जो है ये भी तौबा की शराइत में दाखिल है। तो मुहासबे के दौरान जो है वो इससे ज्यादा तो नहीं कर सकते, उस पर बैठ करके कोई क्लास तो नहीं ज्वाइन कर सकते, उस पर बैठ करके कोई और ऐसा काम तो नहीं कर सकते कि जिससे कि तौबा के ऊपर इस्तेकामत मिल जाए। तो कम से कम जो है वो ये दो काम, ये दो शराइत उसी वक्त पूरी कर ले, नादिम होना और आइंदा ना करने का इरादा करना तारा से। इस बारे में कोई सवाल हो अगर किसी को तो लिख करके चैट विंडो के ऊपर आप पूछ सकती हैं। फिर उसके बाद 36वां जो अदब वो है, झूठ हरगिज ना बोले, झूठ हरगिज ना बोले। तो अब इसके ऊपर तो इतनी सारी बातें होती रहती हैं, हो चुकी हैं, हत्ता कि जो मकारे में अखलाक की सीरीज जो हमारे जुमे के मजलिस के अंदर चली है, तो उसके अंदर जो पहले दो अखलाक थे, पहले दो खुलक जो थे वो इसी से मुताल्लिक थे। पहला था कि सच बोलना और दूसरा था सच का मुआमला करना। ठीक है, तो सच बोलना, सच का मामला करना, तो इसकी जब तफसीर पर हम आते हैं, एक्सप्लेनेशन पर आते हैं, तो ये बात हम बार बार समझा चुके हैं कि सच बोलना का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि झूठ ना बोलना। ठीक है, इसका मतलब ही ये होता है कि झूठ ना बोलना। इसका मतलब ये नहीं होता है कि जो मुंह में आए वो बोल देना। ठीक है, उसको सच, अगर आपको वो सच लग रहा है, अगर आपको अंदर पेट में दर्द हो रहा है कि बस मैं बोल दूं, राइट, तो उसको बोल मत देना सच समझ करके कि भाई मैंने तो हजरत के बयान में सुना था या मैंने हजरत की किताब में पढ़ा था कि सच बोलना चाहिए, तो अब तो बस बोलना है, जरूर से बोलना है। ठीक है, नहीं, बोलना नहीं है। ठीक है, बोलना नहीं है, पहले बोलना है कि इसको बोलने से कोई फायदा है या इसको बोलने से कोई नुकसान है, इसको तोलना कहते हैं। ठीक है, और अगर तोलने पर ये उतरे कि हाँ बोलने का फायदा है, तो फिर उसके बाद बोलना है, सही है, वरना नहीं बोलना। तो झूठ बस नहीं बोलना है। ठीक है, झूठ बोलने से पहले तोलना भी नहीं कि झूठ बोलने से फायदा है कि झूठ बोलने से नुकसान है। अगर झूठ बोलने से फायदा नजर आ रहा है तो झूठ बोल दिया। ठीक है, नहीं, ये झूठ बोलने से पहले तोलना नहीं होता। ठीक है, ये सच बोलने से पहले तोलना होता है। ये बात वैसे अगर लिख लें तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि फायदा रहेगा कि सच बोलने से पहले तोलना है कि बोलना है कि नहीं बोलना है, झूठ बोलने से पहले नहीं तोलना है कि बोलना है कि नहीं बोलना है, झूठ तो नहीं बोलना है। ठीक है, तो नहीं बोलना यानी कि खामोश रहना। ठीक है, तो झूठ बोलने के नुकसान बेशुमार हैं। झूठ एक इस किस्म का काम होता है कि जिसके पैर नहीं होते। ठीक है, तो यानी इस किस्म की एक मखलूक होती है झूठ के, जिसके पैर नहीं होते, तो वो जब इंसान बोल देता है ना, तो वो उसके सामने गोया के एक बोझ की तरह से ना, वो उसके सामने आके गिर पड़ता है। ठीक है, अब वो उसके सामने से हटेगा नहीं, क्योंकि उसको तो पैर ही नहीं है कि वो पैर से जो है वो चल करके साइड पे हो जाए। तो अब झूठ जो है ना, वो आपके रास्ते की रुकावट बन गई है, आपके रास्ते की रुकावट। आप जो खैर के रास्ते के ऊपर चलना चाह रही हैं, तो आपने झूठ बोल करके अपने सामने एक पूरा एक जिस्म, एक पूरा एक यानी एक एक फिजिकल स्ट्रक्चर जो है ना, वो खड़ा कर दिया है जिसके पैर नहीं होते। अब वो वहीं पे खड़ा रहेगा, और वो खड़ा रहेगा का मतलब यह है कि अब आप आगे नहीं जा सकते, क्योंकि यू आर स्टक। ठीक है, और किस वजह से स्टक हुई है? अपने ही झूठ की वजह से स्टक हुई। ठीक है, तो झूठ के पैर नहीं होते क्या, का जो मुहावरा है उसका असल में तो कुछ और मफहूम होता है, लेकिन हमने आज इसका एक नया मफहूम आपके सामने रख दिया है। ठीक है, तो उसके पैर नहीं होते, वो अब आपके सामने खड़ा रहेगा, और आप जो है ना वो अपने परवरदिगार की तरफ सफर नहीं कर सकेंगे, आगे नहीं बढ़ सकेंगे, यू विल बी स्टक। ठीक है, अब आप बनती नए आलमा, जितने आपका मर्जी है आप बनती नए आलमा, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ रही। आलमा बन रही है, लेकिन आलमा बन करके आप आगे नहीं बढ़ रही, आप उधर की उधर ही खड़ी हुई है। ठीक है, तो झूठ हरगिज ना बोले, इस वक्त जो है वो हमारी नेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखी जाए, तो उनमें से सबसे जो प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो यही झूठ बोलना है। ठीक है, और इतना बोलना, इतना बोलना, इतना बोलना कि यानी इसको रग रग रेशे रेशे के अंदर झूठ सरायत किया गया है, ये भी इसके बारे में कहा जा सकता है। और ये भी कहा जा सकता है कि झूठ बोलना हमारी आदत बन चुकी है, आदत, आदतन बोलते हैं, जरूरतन नहीं बोलते। यानी जरूरतन बोलने की भी इजाजत नहीं है, गुंजाइश नहीं है कि आप जरूरतन झूठ बोलते हैं। लेकिन जरूरतन इंसान झूठ बोलता है, तो फिर उस थोड़ा सा उसके लिए एक नरम गोशा होता है कि हाँ भाई बेचारा मजबूर था, वो फंस गया था, फंस गई थी, अब निकलने के लिए उसको जो है वो बोलना पड़ गया। तो ठीक है भाई, अभी इस ही हैज वर्क टू डू, अभी उसको थोड़ा अपने ऊपर और मेहनत करनी है ताकि जो है वो इस झूठ से वो बच सके। तो जरूरतन को इंसान झूठ बोल देता है ना, तो फिर उसके लिए थोड़ा सा नरमी आ जाती है दिल में। लेकिन हम तो जरूरत ही नहीं बोलते, हम तो आदतन बोलते हैं ना, खामखा का बोलते हैं। यानी हम इसलिए बोलते हैं कि भाई कुछ बोलना है, क्यों खामोश बैठे हुए हैं, बोरियत हो रही है। अब अगला बंदा सोचेगा कि यार ये तो उसको तो हम कैसे दोस्त बनाए, इसको तो इसके सामने तो यानी खामोश बैठे रहना पड़ता है, इसको तो बोलना ही नहीं आता। ठीक है, तो अब कुछ ना कुछ तो बोलना है ना, ताकि लोग जो है वो हमारे साथ कंफर्टेबल फील करना शुरू कर दें। तो अब इसलिए जो है वो सच नहीं आ रहा समझ में कि क्या बोलूं भाई मैं, सच्ची बात तो चलो झूठ बोल देती हूँ। ठीक है, और झूठ यानी बोलते 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 जो है ना वो हम यानी कब सही बात कर रहे होते हैं, और फिर एकदम से जो है ना वो एक बहुत बड़ा कोई झूठ बोल देते हैं। ठीक है, और सोचते भी नहीं है कि हम क्या बोल, अभी एक जुमला बोला है और उसी जुमले की जो है वो हम नफी करना शुरू कर देते हैं। तो ये सारा का सारा जो है ना वो ये जुबान का मसला है। ठीक है, तो जुबान को काबू में करना, जुबान को जो है वो कंट्रोल में रखना अपने, बड़ा जरूरी है अगर किसी की जुबान झूठ से नहीं बच सकेगा। ठीक है, अच्छा आपने एक सवाल लिखा है कि आप झूठ नहीं बोलना चाहते लेकिन सच बोलना भी उस वक्त मुनासिब नहीं, तो क्या उस वक्त उस बात को छुपाना सही रहेगा? जी, आप जब कुछ नहीं बोलेंगे तो वो बात जो है वो छुपी रहेगी। ठीक है, बिल्कुल, आप उस बात को छुपा के रखें, यानी खामोश रहना ये है बात को छुपा लेना। बात छुप जाएगी ना आपके अंदर, आपको या आपके हलक में उंगली डाल करके या मुंह डाल करके तो नहीं उस बात को तलाश करेगा ना कि आप क्या बोलने वाली थी। ठीक है, तो वो बात छुप गई जब आपने वो बात नहीं कही है। ठीक है, तो और ऐसी बात जिसका कोई कोई फायदा नहीं है, उसी उस बात को कहा जा रहा है कि आप उस वक्त खामोश रहे। ठीक है, बहरहाल तो वो तो सच के बारे में ना कि वो उसका फायदा नहीं है तो आप उसको खामोश रहे। झूठ के बारे में तो ये है कि बस खामोश ही रहे, बिल्कुल भी बोलने की जरूरत नहीं। रिश्ते जोड़े रखने के लिए झूठ की गुंजाइश है, रिश्ते जोड़े रखने के लिए झूठ की गुंजाइश है। ठीक है, रिश्ते जोड़े रखने के लिए झूठ की गुंजाइश है, ठीक है। अब ये गुंजाइश जो है ना, ये अब क्या हर बंदे के लिए इस गुंजाइश को समझना भी मुमकिन है, ठीक है। तो हम तो इतने हल्के, और हम देखें, ठीक है, गुंजाइश है, बेशक है, बाकायदा हदीस मुबारका के अंदर इसकी गुंजाइश है, ठीक है। लेकिन ये भी तो साथ साथ याद रखें ना कि अगर हम छूट के मरीज हैं, ठीक है, और हम जो है वो आदतन झूठ बोलते हैं, और हमें जो है वो कोई खुदा का खौफ नहीं है, और हमें जो है वो कोई आखिरत की फिक्र नहीं है, और अपनी जुबान के गुनाहों का हमें कोई एहसास नहीं है, तो अब इस शख्स के लिए ये वाली गुंजाइश, जिसको के झूठ के बारे में कोई एहसास नहीं है, ऐसे शख्स के लिए ये गुंजाइश जो है वो फिर क्या बन जाएगी, ये क्या होगी फिर ये गुंजाइश? ये फिर उसके झूठ झूठ बोलने का एक बहाना है ना फिर उसके उसके पास, ठीक है ना। तो अब तो वो इस मौके पर भी झूठ बोलेगा कि जैसे अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी कि भाई सो दैट पीपल कैन फील कंफर्टेबल अराउंड हिम, राइट। तो अच्छी दोस्तियां बनेंगी तो वो उसको जस्टिफाई करेगा कि हाँ भाई मेरे साथ अगर लोगों की दोस्ती अच्छी बन जाएगी ना, तो ये रिश्ता जोड़ने का सबब बन जाएगी, ठीक है ना। मेरे कजन की मेरे साथ अच्छी दोस्ती बन जाए तो ये रिश्ता जोड़ने का सबब बनेगी, तो अब जो है वो मुझे कुछ ना कुछ तो गप्पे मारनी है ना, ताकि मेरे कजन के साथ मेरी अच्छी दोस्ती हो जाए। तो अब गप जो होती है, तो वो समझते हैं ना गप क्या चीज होती है, गप मारना, ठीक है। तो अब जो है वो अच्छी बात, कोई सच्ची बात याद नहीं आ रही, तो चलो झूठ बोलना शुरू कर दो, ठीक है। तो ये जो है ना रिश्ते जोड़ने वाली बात, बेशक हमारी शरीयत में इसकी गुंजाइश है कि रिश्ते जोड़ने के लिए जो है वो झूठ बोला जाए, लेकिन इसलिए नहीं कि अब आप जो है वो यानी ठीक है ना दोस्तियां यारियां लगाने के लिए आप जो है वो उसको रिश्ते जोड़ने का बहाना बना करके आप जो है वो, राइट। वो तो उसके लिए है कि अगर मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई हो गई है, कोई घर के अंदर जो है वो फसाद हो गया है, तो इसके लिए जो है वो किसी के बारे में कोई अच्छी बात बोल देना जो कि उसमें असल में नहीं थी, ठीक है, ताकि दूसरे जो है वो उनके दिलों में इसके लिए कोई नरम गोशा आ जाए, और जो है वो ऐसी इस तरह की कोई सिचुएशन में ना, यानी बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन में, जबकि रिश्ते टूटते हुए घरों के अंदर फसाद होता हुआ नजर आ रहा है, तब जो है वो आप कोई खिलाफे वाक़े है, उसके लिए भी बड़ा प्यारा लफ्ज इस्तेमाल होता है, खिलाफे वाक़े बात करना, उसके लिए झूठ बोलना का लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं किया जाता, ठीक है। तो झूठ बोलना जो है ना, ये बहुत बहुत क्रिटिकल किस्म की चीज है, इसके ऊपर फिर यानी झूठ जो है ना, झूठ की आदत जब पड़ जाती है ना, तो फिर गुनाहों का दरवाजा खुल जाता, ये भी एक बात याद आ गई, राइट। पहले भी समझाइए कि दफा झूठ की जब जिसको आदत पड़ जाती है, तो गुनाहों का दरवाजा खुल जाता है, अब कोई रुकावट नहीं रहती गुनाह करने में, क्योंकि झूठे शख्स को फिर पता चल जाता है कि मैं कुछ भी कर लूं, मैंने झूठ बोल करके निकल जाना है उसमें से, झूठ बोल करके अपने आप को बचा लेना है, ठीक है ना। अब वो गुनाह की एक होती है ना, इंसान को एक फिक्र पड़ी होती है कि हाँ यार कल को मुझे शर्मिंदा ना होना पड़ जाए, कल को जो है वो मुझे मैं पकड़ा गया तो क्या बनेगा मेरा, ठीक है, तो मैं कैसे फिर अपने आप को बचाऊंगा उस शर्मिंदगी से जो गुनाह की वजह से आती है। उसको तो पता चल गया कि भाई मैंने झूठ बोल देना है, बस खत्म बात, साफ मुकर जाऊंगा मैं, साफ मुकर जाऊंगा, ठीक है। तो अब तो दरवाजे खुल गए ना उसके लिए, और फिर इस तरह से जब कोई बड़ा कर रहा होता है घर के अंदर ना, तो फिर बच्चों को भी इसकी आदत पड़ जाती है, और हमने देखा है कि जिस घर के अंदर बड़े झूठ बोल रहे होते हैं ना, उस घर के बच्चे जो हैं वो बेदरेग झूठ बोल रहे होते हैं, बेदरेग झूठ बोल रहे होते हैं, और वो बच्चों का झूठ क्या होता है, वो जो है वो कहानियां बनाएंगे, राइट, एक्साइटिंग किस्म की कहानियां, ताकि दोस्तों के साथ जो है ना वो उनकी जो है वो अच्छी जो है वो यारी दोस्ती बन सके, ठीक है। कभी भूत प्रेत की कहानियां सुनाते रहेंगे, कभी जो है वो और इस किस्म की अजीब गरीब किस्म की बातें जो है वो करते रहेंगे, ठीक है ना, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेइंग समथिंग। तो बच्चों की आदत पड़ जाती है, ठीक है। अच्छा, और बहुत सारे कमेंट्स आए हुए हैं कि घर पे ज्यादा खामोश रहो तो घर वाले कहते हैं क्या बात, कोई गलती हो गई या बात करने का दिल नहीं, इसी तरह बोलकर दूरी कर लेते हैं, तो उनको कैसे समझाए? सच बोलना सीखे ना। देखें, घर के अंदर खामोशी होना, तो ठीक है, तो पहली बात तो ये कि अपने आप को इस सोच से बाहर निकालें कि गुनाह करने से आप लोगों के दिलों को करीब ले आएंगी। ये गलत सोच है ना, कि रहेंगे, और अगर आपने गुनाह से बचाया अपने आप को तो लोगों के दिल दूर हो जाएंगे। ये तो आपकी सोच है ना, और ये गलत सोच है ना, ये अल्लाह ताला की नाफरमानी है ना, ठीक है ना। और इस बात को ना समझना कि भाई दिलों को करीब लाने वाली जात अल्लाह की है, हम दिलों को करीब नहीं ला सकते, दिलों को करीब अल्लाह ने लाना है। और जब हम अल्लाह की नाफरमानी करेंगे तो दिल करीब नहीं आएंगे, अल्लाह ताला फिर दिलों को दूर कर देते हैं अपनी नाफरमानियों की जगह पर, दिलों को दूर कर देते हैं, ठीक है। तो अब जो है ना, वो ये ठीक है, इसका रास्ता ये है कि आप अच्छे काम करें, अच्छे कामों के बारे में सोचें, तो फिर उन अच्छे बारों के कामों के बारे में बात भी होगी घर के अंदर, ठीक है ना। घर के अंदर जो है वो डिस्कशन के लिए बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जो कि सच होते हैं, सच में मबनी होते हैं, ठीक है। तो अब आप निकाल, कितनी सारी बातें होती हैं, ताकि माशाल्लाह तकरार क्लास वाली जो खवातीन है उन्होंने उनको अब लिखना भी शुरू किया, पहले भी खवातीन लिख रही होती थी, हम उसको थोड़ी सी तसहीह करके जो है वो भेजा करते थे ग्रुप के ऊपर। उस घर में यानी मौजूए गुफ्तगु बना सकते हैं, मौजूए गुफ्तगु, कभी किसी वाकये के बारे में बात हो रही होती है, कभी किसी यानी नेशनल इवेंट के बारे में बात हो रही होती है, कभी किसी और चीज के बारे में बात हो रही होती है, तो अब ये आपके मौजूए गुफ्तगु क्यों नहीं हो सकते घर के अंदर, ठीक है। उसको बहुत ही ज्यादा कोई यानी दीनी शक्ल देने की बजाय खाली जो है वो एक आम सा एक डिस्कशन पॉइंट के तौर पर भी आप घर के अंदर कर सकती है ना, ताकि अगला बंदा अगर दीनदार नहीं है या उसको जो है उन बातों से शगफ नहीं है तो वो भी उससे रिलेट कर सके, एक अंदाज होता है बात करने का, ठीक है। तो घर के अंदर बात करने के लिए बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, बस हमें जो है ना वो इस बात को याद रखें अगर कि अल्लाह की नाफरमानी करके हम दिलों को करीब नहीं ला सकते, तो फिर हम दूसरी तरफ एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे कि कौन से सच्चे टॉपिक्स हैं जो कि हम घर के अंदर गुफ्तगू में ला सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे लिखा उन्होंने कि अदालत में जो कुरान मजीद पर हलफ लेकर सच बोलने का इस्तेमाल गलत नहीं है, दुनियावी चीजों के लिए कुरान मजीद का इस्तेमाल गलत नहीं है। भाई, पहली बात यह है कि सच बोलना जो है ना ये दुनियावी चीज नहीं है, सच बोलना जो है वो यानी खालिसतन दीनी चीज है, ठीक है। और फिर अगर अदालत के अंदर जो है वो हलफ उठाना, अब ये हलफ उठाने का कोई अगर मुझे याद दिला सके कि इसके बारे में हमारे उलमा का फतवा क्या है कि कुरान मजीद के ऊपर हलफ उठाना, ठीक है, क्या ये सही है कि क्या ये सही नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला के नाम कसम खाना अल्लाह ताला यानी ये तो जायज है ना, ठीक है। तो अगर अदालत के अंदर जज जो है वो अगर कसम खिलवाता है और अल्लाह के नाम की कसम खिलवाता है तो वो तो जायज है, सही है। तो ये अब ये उसको दुनियावी चीजों के लिए भाई ये यानी मुआशरे के अंदर ये अदालत में जो काम हो रहा होता है ना, ये मुआशरे में फसाद को दूर करने के लिए होता है, ठीक है ना। मुआशरे में फसाद ना हो, अदालत इसीलिए बैठती है लोगों के दरमियान तस्विया करवाने के लिए, लोगों के मसलों को कजियों को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ठीक है, 100% ये देनी चीज है। अब सवाल ये नहीं है कि दुनियावी चीज मकसद के लिए कसम उठाना जायज है कि नहीं है, ये सवाल नहीं, सवाल ये है कि क्या कुरान के ऊपर हलफ उठाना ये भी जायज है या अल्लाह ताला के नाम का ये कसम उठाना ये बस यही जायज है, ये आगे चलते हैं कि कहते हैं कि बिला वजह बोलना अच्छा नहीं, पर काफी शिकायत होती है ये बात रिलेटिव्स कहते हैं। मैं उनकी ये सब बात पे फिक्र भी नहीं कर रही, पर कोई और तरीका है जिससे बात समझ आ जाए। कहते हैं कि बिला वजह बोलना अच्छा नहीं है, पर काफी शिकायत होती है, काफी शिकायत होती है। आपका सवाल मुझे समझ नहीं आया, क्या पूछना है, क्या चाह रहे हैं। समटाइम्स वी हाइड थिंग्स विद द इंटेंशन दैट इट माइट कॉज सम डिले इन आवर वर्क इफ वी स्पीक द ट्रूथ। अनदर फैक्टर, अच्छा, दैट वी शुड नॉट अनाउंस और मूव बिफोर आवर मूव्स बिफोर वी मेक देम। यस, ये भी हदीस मुबारका के अंदर है कि अपने कामों में यानी राजदानी से मदद दो, राजदानी से, यानी अपने कामों को ना, जब तुम इस तरह के है ना, जैसे आपने लिखा है ना कि नजर लग जाएगी तो अपने जो जो इरादे हैं, ठीक है ना, उनका इजहार ना करें हम लोगों के सामने, तो ये 100% दुरुस्त बात है, ठीक है ना। और बाकायदा हदीस मुबारक के अंदर इसकी हमें तारीफ दी गई है कि अपनी बातें जो है ना वो हर बंदे को नहीं बताओ, ठीक है, खाली उनको बताओ जिनको बताने का मकसद है, जो कि उस काम में तुम्हारे साथ शामिल होंगे, जो कि दे आर पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट वगैरह ना, बाकी खामखा लोगों के सामने अनाउंस ना करो। तो जो नजर फैक्टर आपने लिखा है ना, ये 100% 100% ये सही है, ठीक है। तो इससे जो है वो हिफाजत का अपने तौर पे इंतजाम करना चाहिए जितना कर सकते हैं। चलिए, झूठ का मौजू था ये इतना कि उसमें इतना सारा टाइम लगा। अब उसके बाद जो अगला पॉइंट है 37वां के 37 के, जो मजलिस खिलाफ शरा हो वहां हरगिज ना चाहे, ठीक है। तो जिस तरह ऊपर हुक्म था कि नेक सोहबत इख्तियार करे, तो अब यहाँ पर क्या है कि जो बुरी सोहबत हो, बुरी महफिल हो, जहाँ पे अल्लाह ताला के हुक्मों के खिलाफ वर्जी हो रही हो, तो वहां पर हरगिज ना जाए, ठीक है। अब इसके अंदर जाहिर सी बात है, सबसे पहली जो चीज आती है जिसका कि वास्ता खवातीन को सबसे ज्यादा पड़ता है, मर्दों को भी पड़ता है लेकिन खवातीन को और भी ज्यादा पड़ता है, वो है ऐसी दावतें या ऐसी शादियां, ठीक है, जहां पर बेपर्दगी हो और जहां पर मौसीकी हो। ये दो चीजें, मौसीकी और बेपर्दगी, ठीक है। बेपर्दगी का मतलब क्या होता है, औरतें, पर्दे का हुक्म जो है ये मर्दों के ऊपर नहीं है कि मर्द पर्दा करें, ठीक है ना। मर्द जो है वो नकाब पहने, मर्द जो है वो अबाया पहने, अबाया पहने, ठीक है ना। ये हुक्म अल्लाह ताला ने मर्दों पे नहीं रखा है, ये औरतों पे रखा है पर्दे का हुक्म, ठीक है। जिस तरह हैज निफास का हुक्म मर्दों के ऊपर नहीं रखा ना अल्लाह ताला ने, भाई अल्लाह की मर्जी, अल्लाह ताला मर्दों को भी हैज दे देते तो हम कहते कि नहीं, अल्लाह मर्दों को हैज की तो कोई तुक नहीं बनती है, इट डजेंट मेक सेंस कि मर्दों को हैज आए। भाई अल्लाह ताला ने अगर हम मर्दों का सिस्टम ऐसे बना दिया होता तो फिर कोई कर सकता था। अब औरतों का सिस्टम पर्दे वाला बना दिया है, तो अब हमें तकलीफ, क्यों औरतें पर्दा क्यों करें, मर्द क्यों नहीं करें पर्दा, ठीक है ना। तो अल्लाह पे जिसको एतराज है तो फिर वो इसी किस्म के एतराज करते हैं, ठीक है। तो एक बड़ी अच्छी बात सुनी, इंडिया के एक बहुत बड़े आलिम है सज्जाद नमानी साहब, वो एक वाक्य आपने, वो आप में से किसी बहन ने जो है वो मुझे फॉरवर्ड किया था, बड़ी अच्छी बात उन्होंने बताई कि एक दफा कोई गोरी औरत जो है ना वो उनसे प्लेन के अंदर सवाल करना शुरू हो गई, एयर होस्टेस थी, उन्होंने देखा कि मौलवी साहब हैं, सलाम सलाम के बारे में बातें कर रहे हैं, तो क्या उसने कहा कि मुझे एक सवाल है आपसे ना, कि मुझे मतलब मैं इस्लाम को स्टडी कर रही हूँ 1 साल से, तो मुझे कुछ चीजें समझ में नहीं आती इस्लाम की ना, तो मैं आपसे पूछ सकती हूँ। हाँ जरूर पूछें। तो उसने पूछा कि मुझे ये पर्दा समझ में नहीं आता कि आप औरतों को पर्दे में बंद करने की बात क्यों करते हैं, क्यों 4 दीवारी में मुल्क की जो है वो आपकी 50% पॉपुलेशन जो है वो पर्दे में बंद हो जाएगी, तो फिर मुल्क तरक्की कैसे करेगा वगैरह वगैरह, यही सारी चीजें जो होती। तो उन्होंने कहा कि ये मैंने उसको जो है ना वो अमेरिका का एक वाकया सुना करके जवाब दिया, ठीक है। वाकया बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये यकीनन ये यानी हमें पता होना चाहिए इस किस्म की जो है ना, अल्लाह ताला की तौफीक हुई। वो भी यही कह रहे थे कि जब इस किस्म का कोई मुझसे सवाल करता है ना, तो मैं फौरन अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह इसका जो बेहतरीन जवाब है ना वो आप मेरे दिल में डाल दीजिए। तो मैंने अल्लाह ताला से दुआ करी उसी वक्त, राइट। तो अल्लाह ताला ने ये वाकया मेरे दिल में डाल दिया जो पहले कभी नहीं सोचा, ठीक है ना। तो ये होता है, बेशुमार तो इस तरह से मामला होते हैं। तो अल्लाह ताला के दिल में ये जवाब डाला, वो क्या कि 19 ह्यूस्टन में क्या हुआ एक आदमी ने ना बहुत 3 लाखों डॉलर के जेवरात, वो दिमाग खराब होता है लोगों का तो उस दिन घर करने करते हैं, तो ये बात सोच लाखों के डॉलर्स के जो जेवर है ना उसने अपने बॉक्स में रखे हुए थे, उसने जो है वो अपने घर के सामने वाले चौराहे के ऊपर उस बॉक्स को जो है वो खुला खोल करके रख दिया, ठीक है, रात का वक्त था कोई 1 बजे रात के, और फिर अपने वहीं घर भी था किसी अपार्टमेंट बिल्डिंग के अंदर, तो वो अपने घर चला गया और वहां पे बैठ करके वो देखता रहा कि मेरे उस बॉक्स का क्या होता है। तो अब वहां पर जो बॉक्स खुला हुआ था ना, तो थोड़ी देर के बाद जो है वो एक कोई आदमी वहां से गुजरा, उसने देखा कि भाई एक बक्सा पड़ा हुआ है वो खुला हुआ है, और उसने अंदर जाके देखा तो उसके अंदर तो इतने कीमती जो है वो जवाहर और सोना चांदी ना जाने क्या क्या था उसके अंदर। उस शख्स ने कहा कि भाई ये तो यानी बड़ी जबरदस्त चीज है, मेरे तो दिलवारे नहीं आ रहे हो गए। तो उस बंदे ने जो है ना वो उसको उठाया, उठा करके अपनी गाड़ी में रखा और रफू चक्कर हो गया वो। अब ये साहब जो अपने बिल्डिंग के यानी घर के गैलरी में बैठे ये सब देख रहे थे ना, तो उन्होंने जो है वो उसकी तस्वीरें खींच ली और उसकी गाड़ी के जो है वो नंबर प्लेट की भी तस्वीरें खींच ली, और फिर उसने पुलिस को फोन किया, पुलिस जो है वो फौरन उस बंदे को ट्रैक करना शुरू हो गई और जो उसके जेवरात लेके गया था उसको पकड़ करके फिर उन्होंने हवालात में बंद कर दिया। अब उसके बाद उसके ऊपर पूरा मुकदमा चला कि भाई ये जो चोर है तो उसने चोरी करी है तो अब इसका क्या क्या करना चाहिए। लेकिन मुकदमे का जो नतीजा आया ना, वो नतीजा ये था कि जज ने कहा, ह्यूस्टन के हाई कोर्ट के जज ने कहा कि इस जुर्म का जो मुजरिम है ये वो शख्स नहीं है कि जिसने जवाहरात को चोरी किया, बल्कि इसका मुजरिम वो शख्स है कि जिसने इस प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी को, यानी ये जो हीरे जवाहर हैं ये प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी है, इसको उसने जो है वो अनप्रोटेक्टेड चौराहे के ऊपर छोड़ दिया था। तो असल मुजरिम जो है ना वो है, उसको सजा मिलेगी, चोरी करने वाले को सजा नहीं मिलेगी। तो वहां सजा साहब ने जब कहा कि मैंने इस तरीके से उस लड़की को जवाब दिया कि जो औरत अपने आप को पर्दे से बाहर निकालती है ना, तो अब जो भी उसके साथ मर्द बुरा करता है चाहे वो, अब वो तो उन्होंने बड़ी शराफत वाली बातें कह दी कि सीटी मारता है या उसको छेड़ता है, लेकिन बात यहां तक तो नहीं होती ना, बात तो ऑल द वे भी जाती है, ठीक है ना, यानी रेप तक भी जाती है, मर्डर तक भी जाती है, और भी सब कुछ होता है उसके अंदर, ठीक है ना, जो बेपर्दा औरतें होती हैं उनके साथ। तो कसूर जो है ना वो उस औरत का है कि वो कीमती चीज थी, उसको अपने आप को छुपाना था, उसके परवरदिगार ने उसको पर्दे का हुक्म दिया था, उसने पर्दे के हुक्म के ऊपर अमल ना करके मुजरिम वो बनी है, ठीक है ना। और जो मर्द है मुजरिम वैसे तो वो भी है, लेकिन उन्होंने बात समझाने के लिए कहा कि वो मुजरिम नहीं है, बात समझाने की खातिर ह्यूस्टन हाई कोर्ट के फैसले को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कहा वो मुजरिम नहीं है, मुजरिम ये औरत है, ठीक है ना। वैसे इस्लाम के अंदर दोनों ही मुजरिम है, लेकिन औरत जो है वो हरगिज हरगिज जो है वो इस जुर्म से बरी नहीं हो सकती। असल में तो सोर्स ऑफ जुर्म तो वो खुद है। बहरहाल कहने का मकसद ये था कि बेपर्दगी का मतलब क्या होता है, औरत, ठीक है ना। बेपर्दगी का मतलब ये नहीं होता कि मर्द वहां पे मौजूद है, बेपर्दगी का मतलब ये होता है कि आपने औरत को जो है बेपर्दा रखा, ठीक है। तो ऐसी मजारिस जहां पर मौसीकी मौजूद हो या जहां पर जो है वो औरतें बेपर्दा हालत में मौजूद हों, इख्तलात हो मर्दों औरतों का आपस में इख्तलात, सिर्फ निकाब ओढ़ लेना, सिर्फ बुरका पहन लेना, और साथ साथ जो है वो मर्दों के साथ जो है वो हंसी मजाक भी चल रहा है और सारे के सारे मामला चल रहे हैं, इसको पर्दा नहीं कहते, ये पर्दा है ही नहीं, ठीक है। तो पर्दा किसी कपड़े का नाम नहीं है, पर्दा किसी धज्जी का नाम नहीं है, बल्कि पर्दा जो है ना पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट है, सेपरेशन बिटवीन मैन एंड वेमेन, ये है पर्दा, ठीक है। नबी अलैहिस्सलाम अपनी बेगम मोहतरमा हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बिन्त जहश के साथ घर में मौजूद थे, और एक सहन में मर्द भी बैठे हुए थे, औरतें भी बैठी हुई थी, लेकिन औरत ज़ैनब रतान जो है वो एक तरफ बैठी हुई थी, इवन उस वक्त जब पर्दे का हुक्म नहीं आया था, ज़ैनब रतान एक तरफ बैठी हुई थी और मर्द सारे के सारे दूसरी तरफ बैठे हुए थे, ठीक है ना। जब पर्दे की आयात नाजिल हुई हैं तो उस वक्त नबी अलैहिस्सलाम ने ज़ैनब रतान को ये नहीं फरमाया कि तुम अपने ऊपर चादर ओढ़ लो, ठीक है ना, बल्कि नबी, और घर था ना अपना, बाहर होते तो फिर चादर ओढ़ने का होता, क्योंकि बुरके वाला जो पर्दा होता है ये घर की चार दीवारी के बाहर होता है, जहां पे आप कुछ फिजिकल चेंज नहीं कर सकते उस जगह की अहवाल के अंदर। तो अब आप अपने ऊपर चादर डाल लेते हैं क्योंकि आप घर से बाहर हैं। जब आप अपने घर के अंदर हैं तब आप घर के अंदर तब्दीली कर सकते हैं क्योंकि आपका अपना घर है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने क्या किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठ करके बाकायदा एक पर्दा लगा दिया दरमियान में, यानी अब मर्द उस तरफ हो गए और औरत जात जो है वो इस तरफ हो गई, बाकायदा एक एक कर्टन ड्रॉ कर दिया नबी अलैहिस्सलाम ने, इसको पर्दा कहते हैं, ठीक है। तो ऐसी मजालिस के अंदर हरगिज ना जाए, सही है। जहां पर अब ये है कि खानदान के करीबी शादी है और वहां पर जो है वो मौसीकी का भी इस्तेमाल है, वहां पे बेपर्दगी का भी इस्तेमाल होगा, तो अब क्या करें, तो ये एक बड़ा यानी ये डिटेल क्वेश्चन है, इसका इतना हमारे पास अभी टाइम नहीं है, लेकिन पहले हम तफसील से इसके बात कर चुके हैं कि ऐसी जब शादी वगैरह होती है ना तो उसमें फिर जाएं, अगर वहां पर मौसीकी है तो मौसीकी से तो दूर रहना, ठीक है ना, यानी उस जगह पे जहां पे मौसीकी चल रही हो ना वहां से तो आप दूर रहें, वहां पे मौजूद होने की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं। तो फिर क्या करें, जाएं तोहफा दें और वहां से निकल, बस, ठीक है ना, यानी इतनी सी देर के लिए कि जितनी देर में आप अंदर जा करके उनको तोहफा दे सकती हैं, तोहफा दें, भाई आपने अपनी रिश्तेदारी का हक अदा कर दिया, तोहफा दे दिया, आपने अटेंडेंस भी लगा दी, लेकिन अब आप जो है वो बिल्कुल तैयार नहीं है अल्लाह की नाफरमानी रोकने के लिए, तो हम भी तैयार नहीं है अल्लाह ताला की नाफरमानी करने के लिए, बस अब हम आपकी मजलिस में अब नहीं रह सकते, अब हम जा रहे हैं, ठीक है ना। तो मेक अ स्टेटमेंट लाइक दिस, मेक अ स्टेटमेंट, बाकायदा अपने अमल से एक स्टेटमेंट दें उनको कि हम आपसे एग्री नहीं करते हैं, हम आपके साथ जो है ना वो यहाँ पे शामिल नहीं होंगे, और उसकी वजह सिर्फ ही मौसीकी है, ठीक है। तो गिफ्ट देकर के आप वापस निकल आए। अब ये करना जो है वो लोगों को बड़ा मुश्किल लगता है, बहुत मुश्किल है कि भाई ये कैसे करें और ये क्या होगा और ये कैसे होगा, और इतना लोग नाराज हो जाएंगे और लोग जो है वो कता ताल्लुकी कर देंगे, और राइट, खाना खाए बिना वापस आ जाए, खाना खाना फर्ज है कोई शादी का, खाना खाना जी, खाना खाएं खाएं बिना वापस आ जाए, बिना तेरे बिना क्या जीना है ना। तो अल्लाह ताला को भी कभी कभी कह दिया करें ना, अल्लाह तेरे बिना क्या जीना, ठीक है, तो खाने के बिना तो जीना हो सकता है, अल्लाह के बिना जीना हो जाएगा, अल्लाह के बिना जीना नहीं हो सकता, खाने के बिना हो सकता है, ठीक है। तो अब जो है ना ये हम क्यों नहीं कर पाते हैं, हमारे इतने हौसले क्यों नहीं बन पाते हैं, उसकी वजह क्या बनती है, उसकी वजह ये होती है कि हमारी दीन से निस्बत कमजोर होती है, हमारा ताल्लुक कमजोर होता है, जबकि उनका ताल्लुक दुनिया के साथ मजबूत होता है। भाई उनका ताल्लुक अगर दुनिया से कमजोर होता, यानी अल्लाह की नाफरमान, दुनिया का मतलब होता है अल्लाह की नाफरमानी, अगर उनका ताल्लुक नाफरमानों से कमजोर होता तो वो आपको देख करके जो है ना वो फौरन मौसीकी बंद कर देते, राइट, कि भाई ये मौलवी साहिबा आ रही हैं, मौलाना साहिबा आ रही हैं, दीनदार आ रही हैं, ओहो इनका तो हमें लिहाज करना चाहिए, हम जो है वो मौसीकी बंद कर देते हैं, वो नहीं बंद करते, वो आपको देख करके, बेशक आप काले बुरके में होती हैं, बेशक आप जो है वो खानदान की आलिमा भी मशहूर हैं, बेशक आप जो है वो सबको पता है कि आप गुनाह के काम नहीं करती हैं, लेकिन क्या वो आपका लिहाज करते हैं कि अपनी मौसीकी बंद कर दें, वो तो आपको एक ठेंगा भी नहीं देते, वो तो आपका कोई ख्याल, अच्छा आपका क्या ख्याल, वो तो अपने परवरदिगार का ख्याल नहीं करते, वो तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का ख्याल नहीं करते, आपका क्या ख्याल करेंगे, ठीक है ना। तो उनकी निस्बत मजबूत है दुनिया के साथ, दुनिया वालों के साथ, आपकी निस्बत को क्या मुसीबत है कि जो कि दीन के साथ मजबूत होकर के नहीं दे रही है, उसकी वजह क्या होती है कि आपने दीन वालों के साथ अपनी निस्बत मजबूत नहीं करी है, ये मुसीबत है आपकी, आप जो है ना वो इस मखमसे में मुब्तला है कि मैं अपनी निस्बत दीन के साथ मजबूत कर लूंगी, लेकिन आप समझ रही हैं कि बगैर दीन वालों के साथ नस्बत मजबूत किए हुए आप दीन के साथ नस्बत मजबूत कर सकती हैं, ये आपकी भूल है, ये आपकी गलत फहमी है, आप ताल्लुक मजबूत करने का मतलब ये होता है कि दीन वालों के साथ ताल्लुक को मजबूत किया जाए। जब दीन वालों के साथ ताल्लुक मजबूत हो जाता है ना, फिर आप खाए बिना वहां से आराम से तशरीफ ले आएंगे, फिर आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा। ठीक है, अगर खाना भी घर आकर खाएं, दूसरे ने लिखा है, और खाना भी घर आकर खाएं, ये भी बताया था आपने जी, खाना भी घर आकर के खाएं, ठीक है ना। बल्कि और मजे की बात तो ये होगी कि आप जो है ना वो हॉल से बाहर निकल के कहें कि मैं इधर खाना खाऊंगी, यानी कोई ऐसी जगह, कोई और भी तो कमरा वमरे अगर कहीं में मिल जाए, मैं अगर आपने खाना खिलाना है ना, मैं उधर तो खाना नहीं खाऊंगी जहाँ पे आपने म्यूजिक चलाएगी, मुझे आप खाना देना है तो आप बाहर खाना दें, किसी और जगह पे खाना दें जहाँ पे मैं पर्दे के साथ बैठ करके खाना खा सकूं। भाई निस्बत मजबूत करें ना, तब आप ये काम कर सकेंगी। आप निस्बत मजबूत नहीं करना चाहती, आप जो है गुनाह से बच नहीं, आप किसी के सामने स्टैंड नहीं ले पाती हैं, ये आपका आपका मसला है ये, और इसकी जिम्मेदार आप हैं, और इसका गुनाह आपको मिलेगा। निस्बत ना मजबूत करने का ये गुनाह है, दीन वालों के साथ निस्बत ना मजबूत करना ये भी गुनाह है, और ये गुनाहों की जड़ है, ये गुनाह नहीं है, ये गुनाहों की जड़ है, जिसकी वजह से आप गुनाह करती हैं। ठीक है, क्योंकि जबरदस्ती खाना खाने को कहते हैं, और आप इतनी अल्लाह की गाय, अल्लाह की गाय तो अल्लाह सारी गाय अल्लाह ताला की है वैसे, ठीक है ना, उस बंदे के लिए कहा जाता है जो इंतहाई भोला भाला शरीफ और नरम मिजाज और बहुत है ना, तो बस बस सारे दीनदार आजकल ऐसे ही हैं, राइट, स्टैंड नहीं ले सकते। कोई एक बच्चे से बात हो रही थी, नौजवान से बात हो रही थी, बोल के आप में से किसी के बेटे साथ, कोई स्टैंड नहीं ले सकता दीन की खातिर। अच्छा, बच्चा जो है वो कहने लगा कि दीन की खातिर स्टैंड लेना खत्म हो गया। मैंने कहा दीन की खातिर स्टैंड लेना पैदा ही नहीं हुआ, खत्म नहीं हो गया, दीन की खातिर स्टैंड लेना पैदा ही नहीं हुआ असल में, ठीक है ना। तो इस वजह से हमने अभी तक यानी दीनदार तो बन गए, बुरका ओढ़ लिया या आलिमा बन गए, या इस किस्म के चंद और अमाल करने शुरू हो गए, लेकिन हमने दीन को समझा कोई थोड़ी है, दीन की अहमियत को थोड़ी समझा है। इस वजह से हम जो है वो अल्लाह की खातिर, अल्लाह के रसूल की खातिर किसी बात के ऊपर स्टैंड लेना, ये हमारे लिए मुमकिन ही नहीं। ठीक है, क्या लिखा है उन्होंने, गाना बजाना स्टेडियम में और सिर्फ औरतों की मजलिस में ठीक है, शादियों में और सिर्फ औरतों की मजलिस में ठीक है। जी नहीं, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सिर्फ औरतों की मजलिस में म्यूजिक म्यूजिक ठीक नहीं है। हाँ, जुबान से कोई नज़म पढ़ लेना ठीक है ना, और वो भी नज़म भी जो है ना वो कोई वो आशिकी मशी माशूकी वाली नहीं होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन बगैर म्यूजिक के जो वो जो शादी ब्याह के गाने होते हैं, बगैर म्यूजिक के शादी ब्याह के जो होते थे भाई, हमने भी बचपन में सुना, तो म्यूजिक भी नहीं होती थी, ठीक है ना, उसकी गुंजाइश है वो कर सकते हैं, ठीक है ना, जैसे बड़ी उम्र की औरतें जो है वो कर लिया करती हैं, लेकिन म्यूजिक की गुंजाइश नहीं। इस वक्त पता है क्या हाल है, इस वक्त तो बहुत बुरा हाल है ना, म्यूजिक चलाते हैं, और इस वक्त तो पाकिस्तान के अंदर भी जहाँ पे, और पाकिस्तान के भी बड़े कंजर्वेटिव शहर, कराची जो है ना बड़ा कंजर्वेटिव शहर कहलाता है पाकिस्तान का, लेकिन इवन कराची के अंदर भी, दूसरे शहरों की तो बात ही नहीं करते, इवन कराची के अंदर भी अब सुना है कि कोई शादी डांस के बगैर नहीं होती, कोई शादी डांस के बगैर, लड़के लड़कियां मिल करके भी डांस कर रहे होते हैं, खाली लड़कियां भी डांस कर रही होती हैं, या जो है वो खाली मर्द भी डांस कर रहे हैं, यानी डांस जो है ना वो तो अब एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ शादी बन गया। सऊदी अरब के अंदर हमारे एक जो है वो जानने वाले कोई थे, तो उन्होंने जो है ना वो कर दी किसी ऐसी जगह पे शादी जहाँ पे सऊदियों के साथ ताल्लुक बहुत ज्यादा था, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे इन्होंने जो है वो क्या तमाशा बनाया हुआ है कि कैमरे जो है ना वो एंट्रेंस के ऊपर सबके कैमरे सबके फोन ले लेते हैं ताकि किसी के पास कैमरा ना हो, ठीक है, और जो है वो कंप्लीटली एनक्लोज चीज हो, जगह होती है जहां पे कोई मर्द जो है वो इनके हिसाब से इनके ख्याल में कोई मर्द अंदर झांक ना सके, अंदर आ ना सके, ठीक है, बहरहाल जिस तरह भी करते हैं। तो अब जो है ना वो सिर्फ लड़कियों की औरतों की गैदरिंग होती है, अब वहां पर क्या करते हैं, वहां पर जो लिबास पहनती हैं लड़कियां वो ऐसी हैं कि जैसे किसी हॉलीवुड के क्या कहते हैं उसको, बीच साइड पार्टी, बीच साइड या स्विमिंग पूल साइड पार्टी में जिस किस्म के जो है वो बिल्कुल यानी परहना किस्म के जो लिबास होता है ना वैसे लिबास पहनती हैं, और उसके ऊपर शरी दलील क्या भी कोई मर्द के थोड़ी है यहाँ पर, तो ऐसे लिबास पहनी हुई होती हैं। लोगों ने बताया ना ये, हमें घर वाले बताते हैं और दूसरे लोग बताते हैं, ठीक है, तो ऐसे लिबास पहनी हुई होती हैं, और फिर वहां पर फुल ब्लास्ट के ऊपर डिस्को म्यूजिक चल रही होती है, नशीद नहीं, नशीद जिसको नात वात कहते हैं, नहीं, डिस्को म्यूजिक फुल ब्लास्ट के ऊपर चल रही होती है, और लड़कियां ऐसे डांस कर रही होती हैं कि जैसे वो पता नहीं PhD करके आई है यूरोप से, अमेरिका से, और जो है वो इसी किस्म की खराफात देखती रहती हैं, तो उसको कॉपी करने का भी तो वो शैतान करवाता है ना उनसे, ठीक है, तो ये तो आम है सऊदी कल्चर के अंदर, आम है, और खाली सऊदी कल्चर नहीं है, मिडिल ईस्ट के अंदर इतने। अच्छा, पर्दा, पर्दे का क्या तमाशा जी, मर्द नहीं आएंगे यहाँ पर, पहली बात तो ये कि मर्द जो है वो आप कहाँ से इसको इंश्योर करेंगे, मर्द ठीक है नहीं आएंगे, वो पकड़े जाएंगे मारे जाएंगे अगर मर्द आ गए वहां पे, लेकिन मर्दों के कैमरे तो बड़ी आसानी से आ सकते हैं, ठीक है, आजकल फोन्स के अंदर जो कैमरे मौजूद हैं, और वो औरत फोटोग्राफर भी साथ होती है। अच्छा, औरत फोटोग्राफर तो अल्लाह की वलिया होती है ना, राइट, वो तो अल्लाह ताला से जो है वो अहद लेकर के आई है कि मैं अपनी फोटोज जो है ना वो किसी और को नहीं दिखाऊंगी, राइट, अल्लाह की वलिया फोटोग्राफर मेरे ख्याल में, और आजकल औलियाए कराम के लिए जो है ना वो बेहतरीन नौकरी जो है ना वो फोटोग्राफर की नौकरी, ठीक है ना, क्योंकि फोटोग्राफर के ऊपर हम सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं ना, तो अल्लाह के वलियों के ऊपर ही तो इतना ट्रस्ट करना चाहिए, अल्लाह के औलिया पर तो इतना ट्रस्ट करना चाहिए जितना कि हम फोटोग्राफर्स के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, ठीक है ना, कि वो किसी को भी जो है वो हमारी तस्वीर नहीं दिखाएंगे, जैसे भी हमने पूरे हुलिये के अंदर तस्वीर खिंचवाई भी हो किसी को वो तस्वीर नहीं दिखाएंगे, तो ऐसा 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 एतमाद तो एक दीनदार मुसलमान औरत जो है वो किसी अल्लाह के वली पर ही कर सकती है, वैसे तो अल्लाह के वली भी औरत के मामले में तो अल्लाह के वली भी जो होते हैं वो भी फिसल जाते हैं, राइट, औरत के मामले में तो अल्लाह के वली यानी जो विलायत सुगरा के दर्जे पर होते हैं उनके लिए फिसलना कोई मुश्किल काम नहीं होता, लेकिन फोटोग्राफर सबसे अजीम। अभी ये केस आया, अब बात निकल गई है तो वो भी हम आपको बता के छोड़ेंगे, उसके बगैर नहीं छोड़ेंगे हम आपको, एक केस अभी पकड़ा गया, पकड़ा गया, ठीक है ना, अमेरिका के अंदर इंडिया का मुसलमान डॉक्टर, अमेरिका के अंदर इंडिया से गया हुआ, अब इंडिया हो या पाकिस्तान हो दोनों एक ही है, मुसलमान है वो बंदा, ये नाम का मुसलमान है कम से कम, वो डॉक्टर वहां पे क्या करता था कि वो अपने जो उसकी जो मरीजा औरतें होती थी बिल्कुल बेलिबास हालत में जब वो अनकॉन्शियस होती थी ना वो उनके साथ बदकारी करता था और वीडियो बनाता था, मरीजा हॉस्पिटल के बेड के ऊपर लेटी हुई है, डॉक्टर के पास एक्सेस होती है, डॉक्टर के पास बड़ी अथॉरिटी होती है ना, रूहानी डॉक्टरों को तो कोई घास नहीं डालता लेकिन जिस्मानी डॉक्टरों को तो सब घास डालते हैं चाहे अमेरिका में क्यों ना हो, ठीक है, तो बड़ी आसानी से डॉक्टर जो है वो जा सकता है मरीजों के कमरे के अंदर इलाज के नाम पर, ठीक है, तो उसने ऐसे ऐसी तस्वीरें बनाई, ऐसे ऐसे वीडियोज बनाई, हत्ता के जो औरतों के स्विमिंग पूल्स के चेंजिंग रूम्स होते हैं वहां पे उसने अपने कैमरे लगा लगा करके उसके जो फोन्स पकड़े गए हैं, कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव्स पकड़ी गई हैं, उनके अंदर इतनी हजारों वीडियोस हैं कि पुलिस वालों ने बयान दिया है, अमेरिका के पुलिस वालों ने बयान दिया है कि हमें इसमें कितने विक्टम्स हैं इसके, कितनी औरतें और बल्कि मर्द और बच्चों की भी उसने इस तरह की तस्वीरें बनाई, कितने विक्टम्स हैं, हमें बहुत लंबा टाइम लगेगा इस पूरे के पूरे डेटा को देखने में और उसमें में से यानी किस किस के साथ इसने ये जुर्म किया है, ठीक है, नौजवान था 40 साल का, बीवी वाला था यानी बीवी के साथ रहता था, उसकी बीवी ने ही फिर पुलिस को बताया कि मेरा शौहर ये काम कर रहा है, तब पुलिस ने जो है उसको पकड़ा है, वरना पुलिस उसको नहीं पकड़ पाई, आप ये तसाब सोचें जरा इस बात को, अपनी अकले शरीफ इस्तेमाल करें इसको सोचने और समझने के लिए, वो 6 साल से कम अज कम 6 साल से, 6 साल तो ये कह रहे हैं ना, अभी तो उनका ख्याल है कि ये पता नहीं कब से ये काम कर रहा था, हो सकता है इंडिया में भी ये काम कर रहा हो सकता है इंडिया में यानी अमेरिका आने से पहले से ये काम कर रहा हो, लेकिन इनका ख्याल है कि 6 साल से ये काम कर रहा था, 6 साल से वो औरतों की नंगी वीडियोस बना रहा था छुप छुप करके, चेंजिंग रूम्स में, तो जिम्स में, तो हॉस्पिटल्स के अंदर, एंड नो वन वॉज एबल टू कैच हिम। कोई उसको पकड़ नहीं सका, कोई उसके बारे में सस्पिशियस भी नहीं हो सका कि ये बंदा कोई ऐसा काम कर रहा है। कैसे पकड़ा गया है वो, जब उसकी बीवी ने बताया है पुलिस को, तब वो पकड़ा गया है। और अगर अगर उसकी बीवी ना बताती तो वो पता नहीं और कितना अरसा जो है ये काम कर रहा होता। अब आप सोचें, ये शख्स है जो कि अमेरिका में रहता है, अमेरिका में आपको पता है जितने भी बुरे हाल हों लेकिन फिर भी कानून का एक निजाम है, इंसान को एक डर रहता है, खुसूसन इंडिया से आए हुए किसी बंदे को तो डर रहता है ना। पाकिस्तान से आया हुआ कोई बंदा कि अभी पकड़ा गया तो जाए वो अंदर हो जाऊंगा, ये लोग मुझे यहाँ पे, मैं पाकिस्तान को थोड़ी है कि मैं अपनी शोर सिफारिश लगा करके वो निकल आऊंगा, इंडिया को थोड़ी है कि मैं जो पैसे खिला करके जो है वो पुलिस के से बाहर निकल आऊंगा। अमरीका है भाई, पकड़ा जाऊंगा तो वाकई पकड़ा जाऊंगा, लेकिन इस खौफ के बावजूद भी वो लगा हुआ था इस काम में, ठीक है। फिर उसके बाद उसकी बीवी उसके साथ रहती थी, यानी जिनसी तकाजे पूरी करने के लिए बीवी उसके पास मौजूद थी, फिर उसने ये वाला काम किया। अब तस्वुर करें, सऊदी अरब के अंदर, कुवैत के अंदर, कतर के अंदर, दुबई के अंदर, और इंडिया के अंदर, और पाकिस्तान के अंदर, जो लोग सालों साल अपनी बीवियों के बगैर रहते हैं, तो वो अपने शहवानी तकाजे कैसे पूरे करते हो? क्या उनके ऊपर शहवत नहीं चढ़ती होगी? क्या उनको अगर मौका मिले कि वो अपने सेलफोन को किसी ऐसी जगह पे लगा दें और ऐसी वीडियोस बना दें औरतों की, तो क्या वो ये काम नहीं करेंगे? उनके पास तो बीवी भी नहीं है, राइट? अच्छा, क्यों ये काम करेंगे? क्योंकि हर वक्त जो है वो नजिस वीडियोस, नजिस तस्वीरें हर वक्त बंदा देखता रहता है। क्यों इस किस्म की इतनी ज्यादा शहवत बढ़ती क्यों है? क्योंकि फोन के ऊपर हर वक्त जो है वो आप इसी किस्म की खराफात देखे चले जा रहे हैं, तो अब जहां मौका मिलेगा वो अपनी ये शहवत पूरी करेंगे, राइट? तो इस वक्त वो जो एक डॉक्टर पकड़ा गया, क्या ख्याल है, वो अकेला गुनाहगार था पूरी दुनिया के अंदर, अब दुनिया गुनाहगारों से खाली हो गई जब से उसको पकड़ लिया गया है, राइट? तो कितने मर्द आपके इर्द गिर्द रहते हैं कि जिनका बस ना चले कि वो औरत के साथ जो है वो ज्यादती करें। अब वो फिजिकल ज्यादती नहीं कर सकते किसी वजह से भी, तो वो इस किस्म की ज्यादती तो कर सकते हैं ना, कि अपने फोन्स के जरिए उनके वीडियोस बनाए छुप छुप करके, ठीक है। तो अभी चार, ये कोई एक हफ्ता पहले जो है ना ये वाला केस पकड़ा गया है, और वो भी किस वजह से, बीवी ने उसको हैंड इन किया है, वरना वो भी नहीं पकड़ा जाता, ठीक है भाई। अपना ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, घर से, घर के अंदर अपना बहुत एहतमाम होता है इंसान का, लेकिन घर के बाहर जो है ना, बिल्कुल भी किसी ऐसी जगह पे जाना, ऐसे लिबास पहनना, या ऐसे जो है वो जाकर के जिम्स के अंदर टाइट लिबास में या कम लिबास के अंदर एक्सरसाइज करना, स्विमिंग के बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है काम करने की, ठीक है। बस जिस तरह है ना कि अल्लाह ताला देख रहा है ना, तो ये भी याद रखें कि अल्लाह ताला तो देख ही रहा है, लेकिन अल्लाह के बंदे भी बहुत सारे ऐसे हैं जो कि देख रहे हैं, कैमरे की आंख देख रहे हैं, जहां भी आप होंगे ना कैमरे की आंख से आप नहीं बच सकते, ठीक है। तो ऐसी खिलाफ शरा मजालिस के अंदर हरगिज ना जाए। इन्होंने क्या सवाल किया, अगर ना ही जाए तो बेहतर है ऐसी शादियों में, क्या ये कोई रिश्ता तोड़ना होगा रिश्तेदारों से? ये रिश्ता तोड़ना नहीं होगा रिश्तेदारों से, ठीक है ना। यार जिस बात समझाने के लिए कह देता है कि क्या करें, बेचारा अल्लाह, हमारा अल्लाह, राइट? क्या अल्लाह के साथ रिश्ता कोई रिश्ता नहीं होता? तो हम रिश्तेदारों से रिश्ता तोड़ना, क्या हमारा दीन बस यही है, रिश्तेदारों से रिश्ता नहीं तोड़ना? हमारा दीन इधर से शुरू होता है, इधर ही आगे खत्म हो जाता है। व्हाट अबाउट अल्लाह से रिश्ता तोड़ना? व्हाट अबाउट अल्लाह के रसूल से रिश्ता तोड़ना? वो कोई रिश्ता नहीं जिसके तोड़ने का हमें ख्याल हो, जिसके तोड़ने की हमें फिक्र हो? अल्लाह और उसके रसूल के साथ रिश्ता नहीं, उस रिश्ते की तो कोई फिक्र ही कोई नहीं, रिश्तेदार है असल में। हमारा दीन के तहत रिश्तेदारों से रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए भाई। मासियत की बात हो रही है, गुनाह की बात हो रही है, अल्लाह की नाफरमानी की बात हो रही है, तो अब यहाँ पे कौन से रिश्तेदारों के साथ रिश्ता, ठीक है। तो इसकी बिल्कुल परवाह ना करें, गुनाह से बचते हुए अगर उनके साथ मुलाकात हो रही है, अगर उनकी तकरीब के अंदर शिरकत हो रही है, बस उसको उसी के ऊपर बंद रखना होगा कि हर किस गुनाह के साथ ही हमने करना, उनके साथ ही मामला, ठीक है। भाड़ में जाए आपके रिश्तेदार, मर जाएंगे तो फिर रिश्तेदार आएंगे आपकी कब्र के अंदर, राइट। सारे रिश्तेदार जो है ना, वो उधर ही फेंक करके घर वापस जाएंगे और अपनी जिंदगी के अंदर आप मगन हो जाएंगे और आपको कोई याद भी नहीं करेगा, कोई याद भी नहीं करेगा, आके बचाना तो दूर की बात, ठीक है। तो ऐसे रिश्तेदारों का कैसे क्या लेना देना है, ठीक है। रिश्तेदार तो वो रिश्तेदार होते हैं जो कि दीन में आपकी मदद करने वाले रिश्तेदार। नबी अलैहिस्सलाम से ज्यादा अरहम, सबसे ज्यादा रहमतुल आलमीन अल्लाह ताला फरमा रहे, रहमतुल वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल आलमीन, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने अपने रिश्तेदारों के साथ क्या किया, सबको गले लगा लिया, क्या कहते हैं ना, अनकंडीशनल गले लगा लिया अपने रिश्तेदारों को, नहीं, सिर्फ उन रिश्तेदारों ने जिन्होंने दीन में नबी अलैहिस्सलाम की मदद करी, दीन में नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान लेकर के आए, उनको तो गले लगाया और उनको तो इतना बड़ा मुकाम अता हुआ कि हम दुरूद पढ़ते हैं तो साथ साथ उनके ऊपर भी दुरूद पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदना मुहम्मदिन व अला आले सैयदना मुहम्मद वबारक वसल्लम, राइट। लेकिन ये कौन लोग हैं जो कि ईमान लेकर के आए, हजरत जाफर रजी अल्लाह तआला अन्हु, ठीक है ना, और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, और अकील रजी अल्लाह तआला अन्हु, अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु, राइट। लेकिन और रिश्तेदार वो हैं आल के अंदर, वो शामिल ही नहीं है, हालांकि वो बकायदा बायोलॉजिकल रिलेटिव है नबी अलैहिस्सलाम के, अबू लहब सगा चचा है, राइट। और कितने सारे सगे चचा और थे, 12 थे ना ये भाई, 12 भाई थे नबी अलैहिस्सलाम के वाले साहब, एक थे, कितने उसमें से मुसलमान हुए, हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु, अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु, बस, ठीक है। और इन्हीं की औलादें जो है वो आल में आई और उनको बहुत बड़ा मुकाम मिला। लेकिन बाकी कजन्स थे, इतने करीबी दोस्त थे कि हर वक्त नबी अलैहिस्सलाम के साथ रहते थे, लेकिन जब नबी अलैहिस्सलाम के दीन में उनकी मदद नहीं करी तो नबी अलैहिस्सलाम उनसे इतना नाराज हुए, इतना नाराज हुए कि इवन उनमें से दो जब आप के पास ईमान लेकर के आए ना नबी अलैहिस्सलाम, उस वक्त भी उनके साथ नाराज थे, बीवी की सिफारिश के ऊपर पर उनसे बात करी, बीवी की सिफारिश के ऊपर पर उनसे बात करी। तो रिश्तेदारी का क्या है, आज रिश्तेदारी है, कल को आंख बंद हो गई सारी रिश्तेदारी खत्म, जबकि ये दीन का रिश्ता, अल्लाह के साथ रिश्ता, अल्लाह के रसूल के साथ रिश्ता, ये कब्र में भी काम आएगा, ये हशर में भी काम आएगा, और ये कयामत के दिन वहां पर भी काम आएगा, ठीक है। तो हमारी सोच का अंदाज थोड़ा सा अगर बदल जाए ना, तो फिर ये सारी चीजें हमारे लिए आसान हो जाएंगी। हमारी सोच का अंदाज ना बदले तो फिर मुश्किल की मुश्किल ही हमेशा रहेगी। आखिर की जो 3 है, उम्मीद है कि अगली क्लास के अंदर हम इनको मुकम्मल कर लेंगे। अब जो है वो अपनी क्लास शुरू कर लेते हैं, जितना भी वक्त बाकी रह गया है वे सारी माँ वाली क्लास। आखिर अलहमदुल्लाह रब्बिल आलमीन, थोड़ी सी ब्रेक, 1 मिनट की ब्रेक लेकर के हम लोग क्लास शुरू करें।